हवेली, वही रात, सोने से पहले। रात हवेली पर चुपचाप उतर आई थी। आंगन में पीले बल्ब की मध्यम रोशनी पेड़ों की परछाइयों से खेल रही थी। बाकी कमरों की लाइटें बुझ चुकी थीं। हवेली सो रही थी, पर उनका कमरा अभी जाग रहा था। विश्वनाथ बिस्तर पर बैठा था, चश्मा उतारकर साइड टेबल पर रखा हुआ। दिन की आखिरी फाइल बंद पड़ी थी। कंधों में थकान साफ दिख रही थी, वो थकान जो कहकर नहीं जताई जाती। शामली अलमारी बंद करके पलटी, सोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही नजर साइड टेबल पर पड़ी, उसकी निगाह एक छोटी सी दवा की ट्रे पर टिक गई। कॉटन, डेटॉल, सफेद पट्टी। उसे याद आया, शाम को निकलते वक्त विश्वनाथ के माथे पर लगी चोट और ढीली पड़ चुकी पट्टी। शामली ने कुछ नहीं कहा, बस ट्रे उठाई और उसके पास आकर बैठ गई। पट्टी बदलनी है, उसने सामान्य सी आवाज में कहा, जैसे रोज का काम हो। विश्वनाथ ने अनायास हाथ माथे पर रखा। अभी ठीक है, वो टालने की कोशिश में बोला। शामली ने उसकी ओर देखा, वो नजर जिसमें शिकायत नहीं थी, बस देखभाल थी। दर्द तब भी रहता है, वो बोली, जब हम बोलते नहीं। वो और करीब आई, इतना करीब कि बीच में कोई औपचारिक दूरी नहीं बची। विश्वनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस सिर थोड़ा आगे झुका दिया। पट्टी खोलते वक्त शामली के हाथ बहुत संभल कर चल रहे थे। शादी के इतने दिनों के बाद भी उसका स्पर्श अब भी उतना ही सावधान था। कॉटन हल्के से जख्म के पास पहुंचा। विश्वनाथ की आंखें अनायास बंद हो गईं। सांस जरा गहरी हो गई। दर्द? शामली ने पूछा। नहीं, फिर थोड़ा रुक कर, मतलब है, पर आदत है। उस एक जवाब में पूरी जिंदगी की आदतें छुपी थीं। शामली ने महसूस किया, वो और नरमी से काम करने लगी। कमरे में अब घड़ी की टिक टिक और दो लोगों की सांसें थीं। उसका हाथ अनजाने में उसकी उंगलियों से छू गया, बहुत हल्का स्पर्श। शामली पल भर को ठिठकी। सॉरी, आवाज धीमी थी, आदत से ज्यादा एहसास से। विश्वनाथ ने आंखें खोली, इतनी नजदीक से उसे देखा, जहां न औपचारिकता थी न दूरी। कोई बात नहीं, उसने कहा। आज उसका स्वर कम सख्त था, ज्यादा अपना। डेटॉल की हल्की महक कमरे में फैल गई। आज आपको आराम करना चाहिए था, शामली बोली। तुम्हें भी, विश्वनाथ ने तुरंत कहा। शामली रुकी। मैं? दिन भर? वो बोला। अपने लिए नहीं रुकती तुम। शामली कुछ पल चुप रही, फिर बस इतना कहा, किसी को संभालने के लिए खुद को थामे रहना पड़ता है। विश्वनाथ के चेहरे पर एक हल्की सी सख्ती उभरी, जैसे वो इस सच से लड़ रहा हो, लेकिन बोला कुछ नहीं। शामली ने नई पट्टी खोली, धीरे धीरे उसके माथे पर बांधने लगी। उसकी उंगलियां कभी कभी उसके बालों को छू जाती। विश्वनाथ ने सांस रोके रखी। हिलिए मत, शामली बोली। मैं नहीं हिल रहा, उसने तुरंत कहा। दोनों के बीच एक बहुत हल्की मुस्कान आकर बैठ गई। पट्टी बांधते बांधते शामली का हाथ कांप गया। विश्वनाथ ने नोटिस किया। घबराओ मत, वो बोला। मैं यहीं हूं, शामली हंसी, धीमी, सच्ची। आपसे डर नहीं लगता, उसने कहा। विश्वनाथ एक पल को चुप हो गया। पट्टी बन चुकी थी। शामली पीछे हटने लगी। शामली, उसने कहा। वो रुक गई। आज आनंदी के घर वो शब्द ढूंढ रहा था, जरूरी था, शामली ने कहा। कभी कभी लड़ाई जीतने से ज्यादा किसी का दर्द समझना जरूरी होता है। विश्वनाथ ने धीरे से सिर हिलाया। मैं वो नहीं कर पाता, आप करते हैं, श्यामली बोली। बस तरीका अलग है। कमरे में रात की खामोशी उतर आई। सो जाओ, विश्वनाथ ने कहा। श्यामली ने ट्रे साइड टेबल पर रखी और बिस्तर पर लेट गई और उसने आंखें बंद करते हुए कहा, कॉटन कैंडी अच्छी थी। विश्वनाथ की तरफ एक हल्की सी मुस्कान मुड़ी। फिर कभी, उसने कहा। लाइट बुझ गई। एक ही कमरे में दो लोग जागते रहे, एक सी बेचैनी, एक सी नरमी और एक रिश्ता जो नाम से आगे हर रात खामोशी में और गहरा होता जा रहा था। रात, आर्यन का कमरा। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, टेबल लैंप चल रहा था, खिड़की के बाहर अंधेरा धीरे धीरे गाढ़ा हो चुका था। आर्यन बिस्तर के किनारे बैठा था, एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ की उंगलियां घुटनों पर बेवजह चल रही थी। फोन की स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, अदिति कॉलिंग। उसने एक लंबी सांस ली और कॉल उठा ली। हाँ अदिति, उधर से उसकी आवाज आई, नरम लेकिन भीतर कुछ तय किया हुआ। आर्यन, तुम आज दिन भर बहुत चुप थे, क्लास में भी, कैंटीन में भी। मैंने सोचा रात को बात कर लूं। आर्यन ने हल्की मुस्कान खींचने की कोशिश की जो आवाज तक नहीं पहुंची। बस थोड़ा थक गया था। एक पल की खामोशी, फिर अदिति बोली, आर्यन मैं तुमसे एक सीरियस बात करना चाहती हूं। आर्यन सीधा हो बैठा, दिल में हल्की सी आशंका जागी। हम्म, बोलो। अदिति ने सांस ली जैसे शब्दों को सलीके से जोड़ रही हो। मुझे लगता है हमें अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। आर्यन की उंगलियां रुक गईं। कमरे की हवा अचानक भारी लगने लगी। शादी, उसने धीमे से दोहराया। हाँ, अदिति की आवाज में उत्साह था। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, परिवार भी राजी है, तो फिर इंतजार किस बात का। आर्यन ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड, बस सांसों की आवाज। अदिति, अभी हमारी उम्र ही क्या है, वो बोला। पढ़ाई बाकी है, जिंदगी अभी शुरू ही कहां हुई है, उधर से तुरंत जवाब आया। तो क्या फर्क पड़ता है, उसकी आवाज में हल्की जिद थी। जब दो लोग एक दूसरे को चाहते हों तो शादी जल्दी हो या देर से, फर्क क्या पड़ता है। आर्यन ने माथा सहलाया। फर्क पड़ता है अदिति, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, करियर, सब कुछ। अदिति थोड़ी तेज बोली, पढ़ाई शादी के बाद भी हो सकती है आर्यन, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रही हूं, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। उस वाक्य में अपनापन था, लेकिन आर्यन के भीतर अजीब सी घबराहट भी। उसके सामने हवेली का आंगन घूम गया, श्यामली का सहमा चेहरा, विश्वनाथ की चुप्पी। उसने बहुत संभल कर कहा, अदिति मैं मना नहीं कर रहा, मैं बस कह रहा हूं थोड़ा समय। कितना समय, उसने पूछा। आर्यन चुप हो गया, उसके पास कोई तय जवाब नहीं था। देखो, वो धीरे से बोला, हम अभी बच्चे नहीं हैं, पर पूरी तरह तैयार भी नहीं हैं। मुझे लगता है हमें पहले खुद को समझना चाहिए। उधर कुछ पल खामोशी रही, फिर अदिति की आवाज आई, इस बार थोड़ी बुझी हुई, ठीक है आर्यन, अगर तुम्हें यही सही लगता है। आर्यन ने राहत और अपराध बोध दोनों साथ महसूस किए। थैंक यू समझने के लिए, हम फिर बात करेंगे, अदिति ने कहा। गुड नाइट। गुड नाइट, आर्यन ने जवाब दिया। कॉल कट गई, फोन उसकी हथेली में ही रह गया। आर्यन ने छत की तरफ देखा, दिल में एक अजीब सा बोझ था, ना पूरी तरह सही ना पूरी तरह गलत। बाहर रात और गहरी हो रही थी और आर्यन जानता था ये सवाल इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे।